नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज हम भगवद गीता का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे। अब मेरे बात दोहराइए। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानां मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायणः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तात्पर्य में लिखा है, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि दुखग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मड़ोड़ करके अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण को मन को और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है, देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते कचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छुपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से अलग बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने में धन कमाते हैं। हरे कृष्ण। ऐसा आचार्यगण कहते हैं कि ये श्लोक जो है वो गीता का प्रधान श्लोक है। और आश्चर्य की बात यही है कि ये श्लोक दो बार गीता में आता है, आगे भी आता है। थोड़ा सा उसमें अंतर है, लेकिन जैसे कि प्रतिजानी प्रियोसी में चौथा भाग जो उसका है वैसा आता है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामय वैश्यसी युक्त एवं प्रतिजानी प्रियोसी में, ऐसा दूसरा श्लोक आता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी श्लोक को, किसी बात को, किसी उपदेश को दोबारा करता है, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि आप युद्ध कर रहे हो, बाण चला रहे हो, शत्रु को मार रहे हो, राज्य प्राप्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो, लेकिन बाण मार के किसी का वध करने के समय भी आपको मेरा ध्यान करना है। ये बड़ी कठिन बात है, भगवान का ध्यान कर रहा है, किसी का खून करना है, किसी का वध करना है, लेकिन भगवान ये आपको बता रहे हैं कि अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई कार्य करते हैं और भगवान की सेवा में कोई कार्य करते हैं तो क्षत्रिय का धर्म जो वध करने का है वो भी भगवान की सेवा बन जाती है। थोड़ा उनको जो बता दो शांत रहने के लिए। तो यही अगर हमको गीता सार रूप में समझना है तो ये उसका सार है कि कि मैं जो भी कुछ करना है भगवान की मति में करना है, भगवान के ध्यान में करना है, भगवान के विचार में करना है, भगवान के लिए करना है। चाहे वो क्षत्रिय बनकर वध भी करना हो तो भी भगवान के लिए, धर्म के लिए करना है। कभी कभी मुझे बड़ा लगता था कि कितनी अद्भुत बात है, बाण चलाकर किसी का वध करना है। अब भगवान कह रहे माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा ही ध्यान करो और युद्ध करो। हाँ, तो भक्ति की ये परम स्थिति है, यहाँ तक कि वध करना भी भक्ति हो सकती है। तो इसलिए कि हमारी जो कैंप है इसमें, इसमें ये महत्वपूर्ण है कि कोई यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है, कोई यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, कोई यहाँ पर सब्जी काट रहा है, कोई यहाँ पर चश्मे का नंबर निकाल रहे हैं, कोई चश्मा दे रहा है, कोई मरीजों को हमारी पैर धोकर उनके वो मोजा पहना रहे हैं ऑपरेशन थिएटर का, हाँ ऑपरेशन के वस्त्र पहना रहे हैं, कोई उनको भूल दे रहा है, आँखों को अचेत कर रहा है। लेकिन ये सारी सेवाएं एक प्रकार से एक ही जैसी है। अगर कृष्ण भावना मन में है तब से सब सेवाएं आपको आत्मशुद्धि दिलाएगी, सब सेवाएं भक्ति बढ़ाएगी आपकी, और सब सेवाएं आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी सेवा बहुत महान है, और जो झाड़ू लगा रहा है वो सोच रहा है कि मेरी सेवा तो कितनी बेकार है, तो वो जड़ बुद्धि हो गई, देहात्म भावना हो गई। हमको ये देखना है कि भगवान के धाम में और भगवान की सेवा में कोई उच्च नीच नहीं होता है। डॉक्टर साहब अपना कुशल कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, और झाड़ू लगाने वाला साफ कर रहा है इसलिए वो निम्न नहीं है। भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो अगर आपका भाव उनकी सेवा है, उनकी प्रसन्नता है, तो झाड़ू लगाने का भाव वो ज़्यादा स्वीकार करेंगे। अगर ऑपरेशन करने वाला घमंड से ऑपरेशन करता है तो उसका भाव वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो भाव ग्रहण करते हैं जो नम्रता पर आधारित हो। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने अपनी कुशलता से बहुत साल पढ़ाई करके ऐसा कुशलता प्राप्त की है कि वो आँखों में जाकर उसका मोतीबिंद निकाल सकता है, लेकिन वो कला जो है, वो भाग्य जो है, वो भगवान की वजह से प्राप्त हो गया। भगवान के बिना क्या किसको प्राप्त हो सकता है? अगर कोई बोल भी सकता है, कोई नाच सकता है, कोई गा सकता है, कोई उपदेश कर सकता है, या कोई ऑपरेशन कर सकता है, कोई युद्ध लड़ सकता है, हाँ हाईटेक, हाईली टेक्नोलॉजिकल, सारी कुशलता जो है और उसके लिए जो दिमाग जरूरी है वो भगवान का दिया हुआ है। साधन भी भगवान जुड़ा रहे हैं, आयु भी भगवान ने दी है, जीवन भी भगवान ने दिया है, सांस भी वही देते हैं, धड़कन भी उनकी है, तो गर्व किस बात का? खाली हमारा ये क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं प्रिविलेज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको हमारा जो कुशलता है उनकी सेवा में लगाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब तक हमारी कुशलता उनकी सेवा में नहीं लगती है तब तक वो परिपूर्ण नहीं है, सारी हमारी कुशलता बेकार है जब तक वो उनकी सेवा में लगती। जब हमारी कुशलता माया की सेवा में है, माया के विचार में है, इंद्रिय भोग के विचार में है, तो सारा नरक की ओर का यात्रा कर रहे हैं हम, अगले जन्म में नरक की ओर जाके उसका भोग भोगेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं चाहे युद्ध करो, चाहे राजकारबार करो, चाहे राजनीति को अपनाओ, डिप्लोमेसी करो, राज्य की सीमाओं को बढ़ाओ, या प्रजा की रक्षा करो, या प्रजा को जो साधन जरूरी है वो जुड़ा के दे दो, लेकिन मन मना भव, मेरे विचार में करो, मेरे लिए करो, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, और किसी के भक्त मत बनो, 50 लोगों के भक्त मत बनो, हाँ एक हम करो नंदना, एक ध्यान रखो, और मध्याजी माम नमस्करो, मेरा ही अर्चन करो और मुझे ही नमस्कार करो। और इस तरह से जब आप मुझ में परायण हो जाओगे, अभी देखो जो व्यक्ति ये कर रहा है तो उनके लिए कर रहा है, वो कर रहा है तो उनके लिए कर रहा है, ये कर रहा है तो उनकी सोच उनके बारे में सोच रहा है, तो क्या होता है वो मत परायण, वो भगवत परायण हो जाता है। उसकी हर गति के पीछे बैकग्राउंड में भगवान का विचार ही चलते रहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे इस तरह से जब मत परायण हो जाओगे तो मुझे को प्राप्त हो जाओगे। युद्ध करने के बाद में, करोड़ों लोगों की हत्या करने के बाद भी आप मुझको प्राप्त करोगे। जैसे सेना में जब गोली चलाते हैं तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है, पदक मिलता है मरणोत्तर या जीवन में, और घर में आकर बीवी का गला घोट के खून कर दिया तो उसको फांसी लटका देते हैं। दोनों काम तो वध करने जैसे, वध करने के ही है, फर्क क्या है? एक स्वार्थ के लिए किया है, एक कर्तव्य के लिए किया है। तो कर्तव्य के लिए वही कर्म किया है तो मेडल मिलता है, और स्वार्थ के लिए वही काम किया तो फांसी लगती है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, वध करने की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे भाव जो है क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सब लोग इतने दूर से आते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए। तो मैं सुबह आज मंगला में गया था तो सोच रहा था कि अगर किसी बात पर हमको घमंड हो गया कि मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी सेवा मैं कर रहा हूँ, तो वो सारा कार्य वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं वो नष्ट हो जाता है, कुछ उसका लाभ नहीं मिलेगा। और हम समझते हैं कि देखो कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने को मिल रहा है, मेरी जो कुशलता पढ़ाई पिताजी ने की मेरे लिए, वो सब मैं यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में लगा सकता हूँ। जैसे सोचेंगे ऐसा तो भगवान के पास जाएंगे आप तुरंत, और करीब जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, सान्निध्य में जाएंगे। तो हमारी जीवन भी एक यात्रा है और हमारी चेतना जो है उसकी दिशा है। अगर हमारी चेतना इंद्रिय भोग की है तो हम नरक की ओर यात्रा कर रहे हैं, अगर हमारी चेतना भगवान कर भगवान के भक्तों की सेवा है तो हम भगवान की ओर यात्रा कर रहे हैं। जीवन भगवान की ओर यात्रा करने के लिए दिया है, लेकिन हम चुनते हैं कि उनके लिए करना है कि माया के लिए करना है। जिस मन मना भव, मन में हमारे क्या है उस प्रकार से हमारे कार्य होते रहते हैं। मन में हमारे लिए आदर है, जब हम आपको मिलेंगे तो आपको वो आदर की अनुभूति होगी, और मन में हमारे लिए, हमारे मन में आपके लिए घृणा है तो मैं जब आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे तो आपको भी वही फीलिंग आएगा कि ये मुझे घृणा करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर क्या है, हमारा अंदर का सब्सटेंस क्या है, बहुत ज़रूरी है। और वो अंदर का सब्सटेंस जो है उसको परवरिश करने के लिए, उसको वृद्धि करने के लिए जीवन दिया है। वो अंदर की चेतना डेवलप करके, विकास करके, उसका भगवान के योग्य बनाना उसके लिए, ताकि भगवान का ध्यान उसकी ओर जाए, भगवान उस चेतना की ओर आकर्षित हो जाए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य। फिर आप डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, राजनीति वाले प्रधानमंत्री बनो, कुछ भी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य तो भगवान अपने कर्मों से हमको देते हैं, हमारे संचित के द्वारा हमको मिल जाता है, वो हम कार्य हमको मिल जाता है, हम करते रहते हैं। लेकिन कार्य के पीछे जो चेतना है वो हमारी गति जो है उसको बदल देती है। तो हमको कहाँ जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, हम सबको भगवान के धाम में उनकी सेवा करनी है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये श्लोक जो है बहुत चिंतनीय श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मतलब शरीर से, हाथ से, पैर से, मन से, भावना से, दिमाग से, केवल उनके ही बारे में सोचना है, उनके लिए ही कार्य करना है। मुझे हमेशा एक उदाहरण याद आता है कि माँ कैसे होती है, माँ जब वो बालक को जन्म देती है कुछ देर तो 24 घंटे बालक में रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे घर का काम भी करने लगती है, भोजन भी बनाती है, पापा को टिफिन बना के देती है, सासू की देखभाल भी करती है, पानी भी भरती है, भोजन कराती है, घर को साफ भी करती है, कपड़े भी धोती है। लेकिन जब ये सारे काम करती रहती है उसकी चेतना बालक पर फिक्स रहती है, सब्जी पराठे पका रही है और ऊँ हो गया वहाँ पर, तुरंत गैस बंद करके बच्चे की ओर भागती, कपड़ा धो रही है ऊँ आवाज़ आ गई, तुरंत कपड़ा छोड़ के भागेगी वो। उसका मतलब क्या, उसका स्थायी भाव बालक की देखभाल है, स्थायी भाव बालक का विचार है। वो कुछ भी करती होगी तो भी बालक का जो पीछे मन में उसके विचार है वो बंद नहीं होता है। वैसे भक्त को रहना चाहिए। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश दिया था कि जब अपना पिताजी का कारोबार संभाल रहे हो तो ऐसे संभालो जैसे कि एकदम कुशल कारोबार करने वाले हो, लेकिन मन में भगवान के लिए ध्यान करते रहो। आपके मन में किसका ध्यान चल रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बाहरी कार्य आप करते रहो आराम से, लेकिन मन में जो चेतना है वो उनकी है। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया महाप्रभु चैतन्य ने, अजीब उदाहरण दिया, अद्भुत उदाहरण दिया, जो कभी कभी लगता है कि ऐसा उदाहरण क्यों दिया। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कोई विवाहित स्त्री होती है और उसका पति है लेकिन उसका प्रेम किसी और पुरुष पर हो गया है, तो वो क्या करती है, घर का सारा काम इतना अच्छी तरह से करती है, किसी को डाउट नहीं आता है, लेकिन मन में उस पर पुरुष का विचार करती रहती है। ये उदाहरण भगवान ने स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, क्योंकि समझ में जरा आसान है। तो वैसे ही बालक का जैसा चेतना माँ के मन में होती है, सारा काम करते हुए जब वो कपड़े धो रही है तो आपको लगेगा नहीं कि ये नए नए बच्चे की माँ है, लेकिन उसकी चेतना उस बालक के ऊपर है। जैसे ही बालक की आवाज़ आई, कुछ कष्ट वाली या पीड़ा वाली या भूख वाली आवाज़ आई, तुरंत छोड़ के भागेगी वो। तो ये साबित कर देता है कि माता बालक के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे वो कपड़ा धोती होगी या दूध गर्म करती होगी या भोजन बनाती होगी। उसी तरह से हम चाहे डॉक्टर हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या कोई सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहा है चेतना उनके अंदर स्थिर होनी चाहिए। और उसी के लिए हम जप करते हैं। वो इतना आसान नहीं है कि हर समय उनके ही ध्यान में उनके लिए ही काम करते रहना, उसके लिए हम जप करते हैं। जब जप करते हैं तो कम से कम हमारी आत्मशुद्धि होने के कारण हमको उनकी याद आएगी। जब जप करते समय उनकी याद आती रहेगी तो जप करने के बाद भी उनकी याद आएगी, और जब समाप्त होगा हमारा, समझो हमारा नियम समाप्त हो गया, तो भक्तों के संग में काम करेंगे तो भगवान की याद आती रहेगी। जो भगवान की याद में है उनके संग में रहेंगे तो उनकी वजह से हमारी याद बनी रहेगी। इसलिए भगवान का नाम और संतों का संग ये बहुत हमारे प्रधान कार्य है जीवन के। तो संतों के संग में रहेंगे और हमारे कैंप की सेवा करेंगे तो भगवान की याद बनी रहेगी, और कोई ऐसे फिलंथ्रोफिकल कैंप में जाएंगे और वहाँ पर करेंगे तो शायद भगवान की याद नहीं आएगी, समाज सेवा, देह सेवा, आत्म सेवा ऐसे याद आएगी। लेकिन हमारी हर सेवा में हमको भगवान की याद आनी चाहिए, तब हमारा वो कार्य सफल है। हमारा हर सेवा सफल है जब वो भगवान के लिए किया जाता है और भगवान संतुष्ट होते हैं और हमारी भगवान की याद बनी रहती है, तो हमारा कार्य 100% सफल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका सवेरे की प्रार्थना में आने के।